सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे इस पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। आखिर अपने ही बुने जाल में फंस गई टीम इंडिया। इंदौर के तीसरे टेस्ट में सवा दो दिन में मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 76 रन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 विकेट खोकर बना लिए। इंदौर में कुल 31 विकेट गिरे जिनमें से स्पिनर्स ने 26 लिए। तीनों टेस्ट तीसरे दिन निपट गए। 2 भारत ने और 1 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। पलड़ा भारी भारत का ही है लेकिन सीरीज बेमजा है। सवाल यही है कि अपने हक में रिजल्ट लाने के लिए इस तरह की पिच तैयार करना कितना जायज है। भारतीय उपमहाद्वीप में टर्निंग विकेट और सेना देशों में तेज विकेट से मैच तो जीते जा सकते हैं लेकिन 3 दिन में टेस्ट खत्म होने से न तो ये 5 दिनों के टेस्ट का फॉर्मेट लोकप्रिय हो सकेगा और न ही दर्शकों के साथ न्याय हो सकेगा। मैच बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा की बातें ये इशारा करती हैं कि अहमदाबाद में भी हालात जुदा नहीं होने वाले, यानी बल्लेबाजों का संघर्ष और स्पिनर्स की मौज वहां भी दिखाई देगी। इंदौर में भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में मैथ्यू कोहेनमैन के सामने बिखरते रहे तो दूसरी पारी में नेथन लियोन ने अकेले 8 विकेट निकालकर मेजबान टीम को हाशिए पर ला खड़ा किया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शिखर भरत जैसे बल्लेबाज पिच से संघर्ष करते रहे। चेतेश्वर पुजारा ने जरूर दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया पर वो किसी काम ना आया। सीरीज में पहली बार टॉस जीतने के बावजूद रोहित शर्मा अपनी ही पिच का मिजाज पढ़ नहीं सके और 4थी पारी खेलने से बचने की नीयत से उन्होंने जिस सोच के साथ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया वो उनके गले की फांस बन गई। जाहिर है किसी भी टीम का स्कोर पहली पारी में जब 8 विकेट पर केवल 88 हो और फिर 109 रन पर पूरी टीम सिमट जाए तो मैच बचाना मुश्किल हो जाता है। भारतीय स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने उम्मीद के मुताबिक अधिकांश विकेट्स पर कब्जा जमाया लेकिन स्टीव स्मिथ की कप्तानी में मैथ्यू कोहेनमैन और नेथन लियोन ने कहर ढाते हुए उनको बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अंदाज नहीं था कि भारतीय पिच पर विदेशी स्पिनर्स इस कदर जलवा फरोश होंगे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी अपेक्षाकृत बेहतर रहा। उस्मान खाजा को इसके लिए दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने पारी में अकेले अर्धशतक जमा कर टीम का स्कोर 197 तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि दूसरी पारी में वो खाता भी ना खोल सके। पहली पारी में 88 रन की यही महत्वपूर्ण बढ़त मेहमान टीम को सीरीज में पहली जीत का तोहफा भी दे गई। लोकेश राहुल की कमजोर बल्लेबाजी के चलते पड़ रहे दबाव के बाद उन्हें टीम में इंदौर में शामिल नहीं किया गया। लोकेश राहुल लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और उनका औसत लगातार गिरता जा रहा था। हालांकि उनकी जगह पर टीम में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को जगह मिली। गिल का हालिया फॉर्म शानदार रहा है लेकिन इस टेस्ट में उन्होंने मिले मौके का कोई लाभ नहीं लिया। शुभमन पहली पारी में 21 और दूसरी पारी में सिर्फ 5 रन बना सके। रोहित शर्मा के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप किसी काम की नहीं रही। दूसरी ओर इस बार अक्षर पटेल और जडेजा या अश्विन की जोड़ी कोई साझेदारी नहीं कर पाई। जरूरी नहीं कि हर पारी में इनसे बड़े स्कोर की उम्मीद की जाए। पिछले 2 टेस्ट मैचेस में इन सभी की निचले क्रम में की गई साझेदारियों ने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पहले दोनों टेस्ट में भारत की जीत में स्पिनर्स के अलावा अक्षर, जडेजा, अश्विन की साझेदारी का भी खासा योगदान था। बहरहाल इंदौर में मिली शिकस्त के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की भारतीय संभावनाओं को हकीकत में तब्दील होने के लिए अगले टेस्ट मैच तक इंतजार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुका है। भारत अगर अहमदाबाद में जीता तो फाइनल में इन दोनों की ही मुलाकात होगी। इस बीच पहले दोनों टेस्ट में कमाल की गेंदबाजी करने वाले रविचंद्रन अश्विन ने ICC की ताजा टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में खुद को टॉप पर ला खड़ा किया है। 36 साल के अश्विन ने अपने से कहीं उम्रदराज जेम्स एंडरसन को इस जगह से हटा दिया। अश्विन 2015 में भी नंबर 1 गेंदबाज रह चुके हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेटर्स अब अगले कुछ महीने में दूसरी गतिविधियों में व्यस्त हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद मोस्ट वैल्यूएबल टीम में भारत की एकमात्र प्लेयर ऋचा घोष को जगह मिली। वैसे भारत उन 8 टीमों में शामिल है जिसे बांग्लादेश में 2024 में होने वाले अगले T20 महिला विश्व कप में सीधे एंट्री मिल गई है। आयरलैंड और श्रीलंका को अब क्वालिफाई करने के लिए प्रयास करने होंगे। IPL की तर्ज पर महिलाओं के लिए विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का शुरुआती सीजन कल से शुरू हो रहा है। इसमें 5 टीमें गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स शिरकत कर रही हैं। सभी मैच मुंबई के ब्रैबोर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। शनिवार को उद्घाटन मुकाबले में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टक्कर होगी। भारत की टॉप महिला क्रिकेटर्स के अलावा दुनिया भर की चोटी की क्रिकेटर्स को एक साथ दर्शक खेलते हुए देख सकेंगे। WPL में गुजरात जायंट्स की कप्तान बेथ मूनी और एशले गार्डनर जैसी प्लेयर्स पर डिपेंडेंसी तो होगी ही, स्नेह राणा जैसी भारतीय प्लेयर्स की बदौलत भी ये टीम खिताब जीतने की कोशिश करेगी। जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एलिस पेरी और कप्तान स्मृति मानधना पर निर्भर करेगी। मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर के जिम्मे है जिनको इंग्लैंड की नेटसीवर ब्रंट का सहयोग मिलेगा। यूपी वॉरियर्स एलिसा हीली की कप्तानी में खेलेगी। इस टीम में दीप्ति शर्मा और युवा श्वेता सहरावत शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड चैंपियन मैग लेनिंग की कप्तानी में चुनौती पेश करेंगी। इस टीम में जेमिमा रॉड्रिग्स और शेफाली वर्मा के साथ मार्जिन कैप भी शामिल हैं। और अंत में घरेलू क्रिकेट, ग्वालियर में ईरानी कप में शेष भारत एकादश की पहली पारी 484 रन पर समाप्त होने के बाद मेजबान मध्य प्रदेश की टीम ने दूसरे दिन तक 3 विकेट पर 112 रन बना लिए थे। उधर शेष भारत के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल भले ही केवल 2 रन पर आउट हो गए, पर यशस्वी जायसवाल ने 213 रन की दोहरी शतकीय पारी खेली और अभिमन्यु ईश्वरन ने 154 रन की शतकीय पारी खेली। मध्य प्रदेश के आवेश खान को 4 विकेट मिले। उधर सीके नायडू ट्रॉफी U-25 क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल रविवार से खेला जाएगा। इसमें गुजरात का सामना रेलवे से अहमदाबाद में और मुंबई का सामना पंजाब से मुंबई में ही होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैचों में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 1 पारी और 16 रन से, मुंबई ने महाराष्ट्र को 51 रन से, गुजरात ने राजस्थान को 9 विकेट से और रेलवे ने विदर्भ को 8 विकेट से पराजित किया। महत्वपूर्ण प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के खिलाफ पंजाब के प्रेरित दत्ता ने 10 विकेट झटक लिए। इस बीच भुवनेश्वर में चल रहे ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में गत उप विजेता हेमचंद यादव विश्वविद्यालय और गत वर्ष की 4th नंबर पर रहने वाली विनोबा भावे विश्वविद्यालय को क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर होना पड़ा है। हेमचंद विश्वविद्यालय की चुनौती कोल्हन विश्वविद्यालय ने और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने तोड़ दी। आज और कल बाकी के दोनों क्वार्टर फाइनल मैचेस के बाद 5 से 7 मार्च तक फाइनल चरण के मैच राउंड रॉबिन लीग के आधार पर होंगे, जिससे विजेता का फैसला होगा। तो ये था सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित पॉडकास्ट सुनो दिल से। संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।